आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 6, प्रेमचंद के फटे जूते। स्टूडेंट्स, ये एक व्यंग्यात्मक लेख है जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, तो ये जो व्यंग्यात्मक निबंध है इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। और लेखक परिचय के लिए आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 59 पर आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 59 पे शुरू करते हैं लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जवानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 यानी 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक जमानी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने शिक्षा में एमए तक किया नागपुर विश्वविद्यालय से और 1947 के बाद स्वतंत्र लेखन करने लगे। ठीक है, यानी अपने लिए लिखने लगे। और फिर जबलपुर से इन्होंने एक वसुधा नाम की पत्रिका निकाली जिसको बहुत तारीफें मिली, बहुत लोगों ने उसको सराहा, उसको समझा, उसको पढ़ा। और 1995 यानी 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग लेखक यानी जितने भी लेखक व्यंग लिखते हैं उनमें हरिशंकर परसाई जी का नाम पहली पंक्ति में आता है, जो सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी हैं। व्यंग के द्वारा ही उन्होंने अपनी बहुत सी बातें कह दी हैं। अब उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो पहले उनके कुछ कहानी संग्रह हैं परसाई जी की कृतियों में, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये है उनके कहानी संग्रह। ठीक है, इसमें उन्होंने कहानियां लिखी हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज, ये है उपन्यास। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये उनके निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हैं उनके व्यंग संग्रह। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। अब देखिए, जो भी हमारे समाज के, हमारे भारतीय जीवन के वैसे पहलू हैं जिनमें भ्रष्टाचार दिखता है, पाखंड दिखता है, झूठ दिखता है, बेईमानी दिखती है, ऐसे चीजों पर उन्होंने व्यंग लिखे हैं। और इनके व्यंग में केवल कोरा हास्य नहीं है, मतलब केवल हंसी के लिए नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इसलिए लिखे गए हैं ताकि लोग इन्हें समझ सकें, इनको समझ सकें और आदर्श एक स्थापित कर सकें कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, इसमें अंतर जान सकें, अपने आप को सुधार सकें, समाज को सुधार सकें, इस उद्देश्य के साथ ये लिखे गए हैं। हमारे यहाँ पाखंड आपको हर स्तर पे देखने को मिलेगा, समाज में भी, राजनीति में भी, धर्म में भी, हर जगह, और उसी को व्यंग के माध्यम से लेखक ने सामने लाया है। अब हरिशंकर परसाई जी जो है, इनकी भाषा वैसे तो सामान्य बोलचाल की होती है, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही, लेकिन ये अपने लेख को, अपनी रचना को ऐसे संरचित करते हैं, ऐसे उसको गठित करते हैं कि भाषा की मार यानी व्यंग साफ दिखाई पड़ता है। अब थोड़ा सा ये जो लेख निबंध यहां दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं, पाठ परिचय देख लेते हैं। तो आप लोग पेज नंबर 60 पर आइए। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। क्या है इसमें, जैसा कि आप ही का पहला पाठ क्या था? दो बैलों की कथा, है ना, जिसके लेखक थे प्रेमचंद। और ये हिंदी साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट, कलम का सिपाही ऐसे नामों से भी जानते हैं। तो इसी के बारे में ये निबंध परसाई जी ने लिखा है, ताकि वो उनके व्यक्तित्व कैसा था ये बता सके, ये बता सके कि वो बहुत ही सादा जीवन में विचार रखते थे, वो इतने सादगी के साथ जीते थे, उनमें दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज जो दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पे लेखक ने व्यंग किया है कि वो इतना महान कलाकार होके भी इतना सादा था, लेकिन आज एक आम आदमी भी दिखावे के कारण दिखावे की दुनिया में फंसता जा रहा है। अब शुरू करते हैं पाठ, आ जाइए पेज नंबर 61 पे। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछे चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। अब वो क्या बता रहे हैं कि वो प्रेमचंद का एक चित्र देख रहे हैं, कि उन्होंने, प्रेमचंद जी ने कभी अपनी पत्नी के साथ कोई फोटो खिंचवाया होगा, वही वो देख रहे हैं। हम भी खिंचवाते हैं, आजकल तो इतने फोटो का टाइम हो गया, हर कोई फोन में फोटो, पूरे दिन फोटो लेते हैं, सेल्फी खींचते रहते हैं, है ना। लेकिन उस जमाने में फोन नहीं होते थे, फोटो खींचना इतना आसान नहीं होता था, आपको स्टूडियो में जाके एक फोटो निकलवाना पड़ता था और बहुत कम लोगों के पास फोटो होते थे। तो प्रेमचंद जी ने एक बार अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाया होगा, इसी चित्र को देख के जो परसाई जी हैं वो बता रहे हैं कि चित्र में कैसे उनका क्या हुलिया है। सिर पे उन्होंने एक मोटे कपड़े की टोपी बना के पहन रखी है, धोती कुर्ता पहन रखा है, और गालों की जो हड्डियां हैं वो उभरी हुई हैं, कमजोरी है, लेकिन मूछे बहुत घनी घनी है, इसलिए चेहरा भरा लग रहा है। पांव में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने पर परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने पैरों में कैनवास के जूते पहने हैं, जिसके बंद यानी जो फीते हैं बांधने के लिए बहुत ही बेतरतीबी से, बेढंग तरीके से बंधे हुए हैं। जब हम लापरवाही से ही चीजें उपयोग करते हैं तो ये जो बंद होते हैं, जो फीते होते हैं जूते के, वो अच्छे से नहीं बंध पाते हैं, तब उसे कैसे भी इधर उधर करके कस लेते हैं, बांध लेते हैं। वही प्रेमचंद जी ने भी किया है। अब वो कह रहे हैं दाएं पैर का जो राइट लेग है उनका, उसका जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में छेद हो गया है, वो जूता फट गया है, जिसमें से उनकी उंगली बाहर निकल आई, उंगली दिख रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है, अगर हमें फोटो खींचना होता है ना, तो हम क्या देखते हैं, हमारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं या नहीं, हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं, हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे बाल तो सही आ रहे हैं, बहुत चीजों का हम ध्यान रखते हैं, है ना। हम असली में जैसे हैं वैसा ही फोटो में नहीं लगना चाहते, फोटो में हम बहुत अच्छा लगना चाहते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर ये फोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि इंसान बहुत सज धज के जाता है, सवर के जाता है, तो अगर ये फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे आए हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं, तो असल जिंदगी में क्या पहनते होंगे। फिर उन्हें ध्यान आया कि नहीं, ये आदमी पोशाकें नहीं बदलता होगा, कपड़े इसके अलग अलग नहीं होते होंगे, यानी जैसे वो असल जिंदगी में रहते हैं वैसे ही वो यहाँ पे भी फोटो में भी दिख रहे हैं, उन्हें दिखावा नहीं आता, वो जैसे रहते हैं वैसे ही फोटो उन्होंने खिंचवाया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा लज्जा संकोच या झेप नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, यानी जब भी ये फोटो देख रहा हूँ, तो मेरे मन में आता है कि मैं इनसे पूछ लूँ कि मेरे साहित्यिक पुरखे, है ना, यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं, वही परसाई जी के लिए प्रेमचंद रहे होंगे कि तुम मेरे साहित्य के पूर्वज हो, और तुम्हारा जूता फट गया है जिसमें से उंगली दिख रही है। तुमको क्या एहसास नहीं है? क्या तुमको पता नहीं चला? या तुमको इसको लेके कोई शर्म नहीं आ रही है? कोई संकोच महसूस नहीं हो रहा है? तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए, अगर धोती को नीचे खींच लेते तो ये उंगली ढक जाती, किसी को पता ही नहीं चलता जूता फटा है। लेकिन तुम तो बड़ी बेपरवाही से, बड़े विश्वास के साथ ऐसे ही फोटो खिंचवा रहे हो। और फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, रेडी के समय हम क्या करते थे, पहले फोटो खिंचवाने के टाइम रेडी प्लीज या स्माइल प्लीज करते थे और लोग मुस्कुराने लगते थे, है ना? वैसे ही प्रेमचंद जी ने भी किया होगा, मुस्कुराने की कोशिश कर ही रहे होंगे जैसे तैसे कि आधे में ही फोटो खींच गया। तो अब ये जो अधूरी मुस्कान है, इसमें लेखक को क्या दिख रहा है? व्यंग, उपहास, दुनिया का मजाक उड़ा रहे हैं कि एक फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या करते हैं, जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं दिख जाते। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 62। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है? फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अब वो कह रहे हैं कि ये कैसा आदमी है, खुद तो इन्होंने फटे जूते पहने हैं लेकिन ये किसी और पे हंस रहे हैं, किसी और का उपहास कर रहे हैं, किसी पे व्यंग कर रहे हैं। क्यों? अगर तुम्हें फोटो खिंचवाना था तो तुम्हें अच्छे जूते पहनने चाहिए थे, और अगर तुम सही जूते नहीं थे तो तुम फोटो नहीं खिंचाते। ऐसा फोटो खिंचाना क्या जरूरी था? फिर उन्होंने अनुमान लगाया परसाई जी ने कि हो सकता है पत्नी का आग्रह रहा हो, यानी पत्नी ने जिद की हो कि फोटो खिंचवाना है खिंचवाना है, तो आखिरकार तुमने अच्छा चल वही कह के मान गए होगे और फोटो खिंचवाने आ गए होगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना? ये देखिए लाइन में व्यंग है कि ये तो ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए भी जूते नहीं है। यानी जैसा हम मानते हैं कि हमें दिखावे के लिए हर चीज होनी चाहिए, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा। वो कह रहे हैं जब भी मैं तुम्हारी ये तस्वीर देख रहा हूँ, ये फोटो देख रहा हूँ, तुम क्या महसूस कर रहे होगे ये सोच के मैं रोना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में तो व्यंग है, एक उपहास है दूसरों के लिए, तो वो रोना मेरा रुक जाता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोर्ट से वरविदाई या वरदिखाई करते हैं और मांग की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। आप क्या कह रहे हैं? तुमको पता ही नहीं है कि फोटो का महत्व क्या होता है, फोटो खिंचवाना कितनी बड़ी चीज होती है। अगर तुम्हारे पास फटे जूते थे तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ी देर के लिए किसी से अच्छे जूते मांग लेते। लोग क्या कुछ नहीं मांगते। यहाँ देखिए इसमें अनुच्छेद में आपको व्यंग दिखेगा कि लोग तो दूसरे मांग के कोट पहना देते हैं और लड़का वर दिखाई, यानी लड़का दिखा देते हैं कि देखिए हमारा ये लड़का है। किसी और से मोटर गाड़ी मांग लेते हैं, बारात निकाल लेते हैं। यहाँ तक तो बीवी भी मांग के फोटो खिंचवा लेते हैं, तुमसे सिर्फ एक जूते भी नहीं मांगे गए। लोग तो इत्र लगा के फोटो खिंचाते, इत्र यानी सेंट, जिससे खुशबू आ जाए फोटो में, लेकिन तुमसे तो जूते भी नहीं मांगे गए। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा हुआ जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। अब वो क्या कह रहे हैं? टोपी की कीमत 8 आने थी लेकिन जूता उस जमाने में फिर भी 5 रुपए का मिलता होगा, क्योंकि जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज्यादा रहती है ना? बहुत सी टोपियां जूते पर न्योछावर होती है, यानी कई लोग किसी के नीचे काम करते हैं, है ना? लोगों का जूता किसी पे सवार रहता है। अब वो कह रहे हैं मुझे ये बात पहले इतनी कभी नहीं चुभी थी, लेकिन अब जब जब मैं तुम्हारा ये फोटो देख रहा हूँ, जितनी बार ये फटे जूते देख रहा हूँ, तो मुझे ये बहुत चुभन महसूस हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें लोग कितना महान मानते थे। एक महान कथाकार हो तुम, उपन्यास सम्राट हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या नाम तुम्हें दिए गए, क्या क्या उपाधियां तुम्हें दी गई, लेकिन तुम हो कैसे? देखो फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर से वो अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती, अंगूठे के नीचे से फट गया है। यानी मेरा जूता ऊपर से तो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे से वो फटा हुआ है। इसीलिए जब मैं चलता हूं तो मेरा अंगूठा कई बार जमीन पे घिसता है, कई बार खून निकल आता है, जख्मी हो जाता है पैर, पूरा पैर चल जाता है, लेकिन उंगलियां नहीं दिखती। यानी ऊपर से देखकर कोई नहीं पहचान सकता, कोई नहीं कह सकता कि मेरा जूता फटा है। अब हम दोनों में अंतर क्या है? तुम्हारी उंगली दिख रही है, मेरी उंगली नहीं दिख रही है ना? पर तुम्हारी उंगली दिख रही है तो क्या हुआ, कम से कम पांव सुरक्षित तो है। मेरी उंगली ढकी हुई है, किसी को नहीं पता जूता फटा है, लेकिन नीचे ही नीचे मेरे फटे जूते का घाव मुझे झेलना पड़ रहा है। मेरा पैर छिल रहा है, उसमें घाव हो रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी तुम दिखावा नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपनी असलियत को ढक के झूठे दिखावे में विश्वास रखते हैं। यह है तुम्हारी और हमारी प्रवृत्ति में अंतर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 63 पर। यहाँ पेज नंबर 63 पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक तस्वीर भी दी गई है प्रेमचंद के जूते दिखाने के लिए, कि जूते हैं और एक पैर में से उंगली बाहर दिख रही है, यानी जूते फटे हुए दिख रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गए हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। कैसे फट गया ये? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? अब वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जूता फटा है, फिर भी तुमने कितने ठाट से पहना है, इतनी शान से पहना हुआ है, तुम्हें कोई लज्जा नहीं आ रही है, कोई शर्म नहीं महसूस हो रही है इसमें। लेकिन मैं ऐसा जूता नहीं पहन सकता। मेरे पास अगर ये फटे हुए जूते हो, मैं नहीं पहन सकता, और इस हालत में फोटो तो बिल्कुल नहीं खिंचवा सकता हूँ। फिर चाहे मेरी कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे, लेकिन जब तक मेरे पास सही कपड़े सही जूते नहीं होंगे, सही हालत में नहीं होंगे, मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी ये जो व्यंग मुस्कान है, जो तुम व्यंग कर रहे हो, दूसरों पे हंस रहे हो, इससे मेरे हौसले पस्त हो जाते हैं, मैं हिम्मत हारने लगता हूँ कि ये क्या है, क्या कहना चाहते हो इस मुस्कान से? क्या होरी का गोदान हो गया? ये देखिए यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, वो आएंगी। गोदान उनका एक सबसे महान उपन्यास है। तो वही कह रहे हैं, क्या होरी ने गोदान कर ली, या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया? नहीं, माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, यही मुस्कान मालूम होती है। ठीक है, एक कहानी है कफन प्रेमचंद जी की, जिसमें एक औरत जब मर जाती है तो उसके पति और ससुर उसके कफन के लिए रुपए इकट्ठे करते हैं और आखिर में उसी से वो शराब पी लेते हैं। वो कह रहे हैं ये वही वही मुस्कान है, तुम हम पे उसी तरह से हंस रहे हो कि हम भी, हमारी प्रवृत्ति इतनी नीच हो चुकी है कि हम अपने असलियत दिखाते ही नहीं है। अब वो फिर कह रहे हैं, मैं फिर से तुम्हारा जूता देखता हूं। कैसे फट गया ये? मेरी जनता के लेखक, यानी ये जनता के लेखक थे, हम लोगों के, इन्होंने आम लोगों की भाषा लिखी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जूता कैसे फट गया? क्या तुमने बहुत चक्कर काटे, या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील तो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? यानी तुम, बनिए तुम्हारा तकाजा कर रहा होगा, इसीलिए तुम उससे बचने के लिए बहुत दूर चक्कर काटते रहे। क्यों तुम्हारे आखिर ये जूते फटे कैसे, मैं ये जानना चाहता हूं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसने बड़ा पछतावा हुआ, उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। वो क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर तुमने इतने चक्कर लगाए होते, इतना चले होते, तो जूता घिस जाता, फटता थोड़ी ना। जैसे कुंभन दास का जूता फट गया था फतेहपुर सीकरी आने में, और उन्होंने लिखा था, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। यहां तक आते आते हमारे पैर घिस गए, जूते घिस गए और हरि नाम तो हम भूल ही गए। नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 64 पे। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देते दुख उपजते हैं तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया, कोई टीला जो रास्ते पे खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियां पहाड़ तोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम ज्यादा चले होते तो जूता घिसता लेकिन फटता नहीं, पर तुम्हारा फट गया है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुमने किसी सख्त चीज को ठोकर मारी है, कोई ऐसी चीज जो परत दर पर जम गई है सदियों से। ये किस चीज को कह रहे हैं, जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, बुरी परंपराएं, दिखावे की प्रवृत्ति है ना, इंसान की गुम होते उसके नैतिक मूल्य, ये सारी चीजें प्रेमचंद ने ठुकराई हैं, इन्हीं पे उन्होंने ठोकर मारी है। लेकिन ये बहुत कड़ी है क्योंकि ये सदियों से जमती आ रही है, आज या कल की नहीं है, बहुत बरसों से सालों से जम रही है लोगों के मन में, जिसे प्रेमचंद जी ठोकर मार देते हैं। पर वो क्या कहते हैं, तो उससे बगल बगल से भी तो निकल सकते थे, यानी उससे समझौता कर लेते, उससे मुंह मोड़ लेते, या जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन नहीं, तुमने उसे टक्कर दी। क्यों दी, हर नदी पहाड़ थोड़ी फोड़ के निकलती है, कोई इधर उधर से निकल जाती है या फिर अपना रास्ता मोड़ लेती है, तुमने उसे टक्कर क्यों मारी? तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। अब वो कह रहे हैं लेखक प्रेमचंद जी से कि तुमने तो समझौता ही नहीं किया, ठोकर मारते रहे क्यों, क्या तुम्हारी कमजोरी थी होरी वाली जो होरी को ले डूबी? यानी होरी की क्या कमजोरी थी, नेम धर्म, यानी नियम धर्म को वो बहुत मानता था, इसी वजह से उसे हर बार कोई ना कोई नुकसान झेलना पड़ता था। फिर वो कहते हैं कि नहीं, नियम धर्म तुम्हारी कमजोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो तुम्हारी मुस्कुराहट में दिख रहा है, जो व्यंग दिख रहा है, उससे पता चल रहा है कि होरी को तो नेम धर्म ने बांध रखा था, वो उसकी तरह उसके लिए जंजीर की तरह था, लेकिन तुम्हारे लिए ये मुक्ति है, तुम इससे मुक्त हो, बंधे हुए नहीं हो। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ को नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो पैर में से तुम्हारी उंगली निकली है, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ जूता फट गया इसलिए दिखाई दे रही है, बल्कि जानबूझ के निकली है ताकि तुम किसी की तरफ इशारा कर सको। लेकिन आखिर तुम किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? शायद उसकी तरफ जिसे तुम घृणित समझते हो, यानी इतना बुरा आदमी जो दिखावे में लिप्त रहता हो उसे तुम इतना घृणित समझते हो कि उसकी तरफ अपने हाथ भी नहीं दिखाना चाहते, अपने हाथ की उंगली भी उसकी तरफ नहीं उठाना चाहते, इसीलिए तुम अपने पैर की उंगली से उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, तुम उसे तुच्छ समझते हो बिल्कुल, और तुम इतने महान हो कि तुमने उससे दूरी बनाते हुए, उसे ठोकर मारते हुए अपने पैर के जूते भी फाड़ लिए। मैं सब समझ रहा हूँ, कह रहे हैं मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी और ये व्यंग मुस्कान भी, यानी तुम किस पे व्यंग कर रहे हो, किसका उपहास उड़ा रहे हो, यह सब मैं समझ रहा हूँ, और तुम्हारी उंगली का इशारा किसकी तरफ है यह सब भी मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए लास्ट पैराग्राफ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर बांव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? यानी अब क्या कह रहे हैं परसाई जी, लेखक जी, हाँ बता रहे हैं कि मैं समझ गया हूं, तुम मुझ पे हंस रहे हो, हम पर हंस रहे हो, हर उस व्यक्ति पे हंस रहे हो जो दिखावे में विश्वास रखता है, यानी उंगली तो छुपा रखी है लेकिन नीचे ही नीचे कष्ट झेल रहा है, अपने तलुए को घिस रहा है, और जो टीला है जो दिखावे की प्रवृत्ति का, बुरी प्रवृत्तियों का, जो रूढ़िवादी परंपराओं का, बुरी परंपराओं का, उनको उनसे हम समझौता कर ले रहे हैं या फिर उसके बाजू से निकल जा रहे हैं, उसको जैसे का तैसा रहने दे रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। पर तुम हमें बता रहे हो, देखो मैंने तो इसे ठोकर मार के जूता फाड़ लिया अपना, इसे खत्म कर देना चाहा मैंने, इसीलिए मेरा जूता भी फट गया। माना मेरी उंगली बाहर निकल आई तो क्या हुआ? तुम लोगों को उंगली दिख रही है जूते में से बाहर, तो क्या हो गया? मेरा पांव सुरक्षित है, नीचे मेरा तलवा घिस नहीं रहा है, मैं चाहे जितना चाहूं चल सकता हूं, जितनी दूर तक चाहे चल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन तुम लोग तो उंगली की ढकने की चिंता में हो ना, यानी तुम तो दिखावे के जीवन में जीना चाहते हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बुरी चीजें झेलनी पड़े, सब सह लोगे, इसीलिए कि हम बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति हैं। चलो ठीक है, मान लिया उंगली ढके रहोगे, उंगली को ढकने की चिंता भी करते रहोगे, पर ये जो नीचे नीचे तलवे का नाश हो रहा है, यानी बार बार तुम्हारा पैर घिस रहा है, तुम्हारा पैर छिल रहा है, तुम्हारे पैर में घाव हो रहे हैं, चोट लग रही है, उसमें से खून निकल रहा है, इसके बाद तुम चलोगे कैसे? और चले भी तो आखिर कितनी दूर तक चल पाओगे? ऐसी स्थिति में बताओ, मैं तो जूता फटा होने के बाद भी आराम से चल सकता हूँ, बिना किसी दर्द के चल सकता हूँ, पर तुम्हें उंगली ढकी होने पे भी दर्द अनुभव होगा और तुम मेरे आधे रास्ते तक भी नहीं चल पाओगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। फिर से वही पंक्तियां यहाँ पे लेखक ने लिखी हैं कि मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात भी, कि ये क्यों फटा, कैसे फटा और तुम इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हो, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। तुम्हारा उंगली का इशारा किसकी तरफ है ये भी मुझे समझ आ रहा है, तुम हम लोगों को कैसा समझते हो ये भी समझ में आ रहा है, और इसीलिए तुम्हारे चेहरे पे ये व्यंग की मुस्कान है। तुम कहना चाहते हो कि देखो तुम लोग कैसे हो, दिखावे में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, अपना ही नाश कर रहे हो, और मैं कितने शान से खड़ा हूं, कितने आराम से अपना जीवन जी रहा हूं। तुम्हारा जीवन कष्टदायी है और मेरा जीवन आरामदायक है, इसीलिए तुम हम पे ये व्यंग करके हंस रहे हो और हमारा उपहास उड़ा रहे हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये पार्ट होता है आपका पूरा। तो हरिशंकर परसाई जी जो इसके लेखक हैं, इस व्यंग्यात्मक निबंध के, उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते में क्या बताया कि प्रेमचंद जी एक महान कथाकार होने के साथ महान व्यक्ति भी थे। उनका व्यक्तित्व कितना सादा था कि वो दिखावे की दुनिया से बहुत दूर थे, है ना, उन्हें दिखावा करना बिल्कुल नहीं आता था, उन्हें ये चीजें पसंद ही नहीं थी, यहां तक कि जो गलत चीजें हैं दुनिया में वो उससे लोहा लेते थे, उससे लड़ते थे, और उस चक्कर में अगर उनके जूते फट जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो उन्हें कोई कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जूते तो सभी के फटे हैं, वो अलग बात है, किसी का नीचे से तो किसी का ऊपर से। अब जिसका ऊपर से फटा है, कम से कम लोग यही कहेंगे कि जूता फटा है, पर उसे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। जिन लोगों का नीचे से फटा है वो ऊपर से ढके हुए जूते से खुश हैं और अपने स्तर को बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं, सबके सामने दिखावे में जीकर बहुत खुश हो रहे हैं कि देखिए हम तो सुख सुविधा से संपन्न हैं, आराम से जीवन जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो पैरों को कष्ट दे रहे हैं, पैरों में जो घाव कर रहे हैं, उससे चलना मुश्किल हो जाएगा और फिर हमारा जो व्यक्तित्व है ऐसे लोगों का, जो हम दिखावे वाले लोग हैं, हमारा व्यक्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हश्र होगा, ये कहीं ना कहीं प्रेमचंद को पता है, इसीलिए वो हम सब पे हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। और लेखक कहता है कि मैं भी ये बात समझता हूँ, बखूबी समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, और मैं भी दिखावे वाले लोगों में से ही हूँ, इसीलिए ये जो तुम्हारी उंगली का इशारा है ये मेरी तरफ ही है, हम सबकी तरफ है, हम दुनिया में जितने भी लोग दिखावे के साथ जीते हैं उन सबकी तरफ तुम पैरों से इशारा कर रहे हो, हमें इतना घृणित समझते हो, इतना नीचे समझते हो कि अपने हाथ की उंगली तक हमारी तरफ तुम नहीं उठाना चाहते हो, इसीलिए तुम इशारा तो कर रहे हो लेकिन केवल पैरों की उंगलियों से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक निबंध था जिसे आप घर जाके दोबारा पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए और प्रेमचंद जी का जीवन कितना सादा था, कितना महान था, ये भी आपको समझ में आ जाए। अब बचे इसके प्रश्नोत्तर, जो कि हम अगले ऑडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।